और दूसरा ये अगस्त मास हमें याद दिलाता है हम सबके अति प्रिय आदरणीय बड़ी दादी जी की, जिन्होंने भी अपने जीवन में धुन लगा दी थी अंतिम दिनों में कि मुझे कर्मातीत बनना है, कर्मातीत बनना है, कर्मातीत बनना है। कोई भी बात दादी जी से पूछी जाती थी तब भी दादी कहती थी कि अब कर्मातीत बनना है। धुन थी और इस धुन ने उन्हें उस कर्मातीत अवस्था तक पहुंचाया। मम्मा हो, बाबा हो, हमारी सभी दादियां हो, सभी ने इस सुंदर अवस्था को प्राप्त किया। तो हम सबका भी ध्येय कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना और शुरुआत कर्मयोगी जीवन, क्योंकि कर्मयोग ही हमें कर्मातीत अवस्था की ओर लेकर चलेगा। और इसीलिए बाबा रोज ही हमें योगयुक्त रहने की सुंदर सुंदर विधियां बताते हैं, योगयुक्त रहने के लिए प्रेरित करते हैं। और कर्मयोग के लिए एक सुंदर सा बाबा का महावाक्य कि जैसे आत्मा के बिना शरीर का कोई महत्व नहीं है, वैसे ही योग के बिना तुम्हारे कर्म का कोई महत्व नहीं है। योग युक्त कर्म ही तुम्हारे कर्म को यादगार बनाते हैं, तुम्हें सारे संसार के सामने प्रत्यक्ष करते हैं, एग्जाम्पल बनाते हैं। तो ऐसे सुंदर और गहन विषय को आज के संध्याकालीन सत्र में आदरणीय सूर्य भाई जी के साथ हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमेशा की तरह ही भ्राता जी का पूरा ही जीवन योग की गहराई में उतरने में बीता है, कर्मयोग को उन्होंने जिया है, साकार किया है और लाखों आत्माओं को योगी जीवन की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। इसीलिए सभी आपको प्यार से योगी राज के नाम से पुकारते हैं। तो ऐसे आदरणीय भ्राता जी जो हमारे फॉलो फादर प्रोजेक्ट के गाइड भी हैं, मैं अनुरोध करूंगा प्रथमतः कि भ्राता जी इस सुंदर विषय पर हमें प्रकाश दें, पश्चात आपके द्वारा प्रेषित किए गए प्रश्नों की ओर हम बढ़ेंगे। आदरणीय भ्राता जी।
ओम शांति। मुझे दो बातें याद आ रही थी, जो कर्म करते योग युक्त रहते हैं वे बहुत बहादुर हैं, महावीर हैं, बाबा की मुरली से है। क्योंकि नॉर्मली लगभग सभी मनुष्यों की बुद्धि कर्म करते हुए कर्म में ही लगी रहती है, कर्म में उतार चढ़ाव, कर्म में तो बुद्धि का प्रयोग होता ही है। लेकिन जो दिव्य बुद्धि से संपन्न है और जिनकी बुद्धि शक्तिशाली है, वो कर्म में बुद्धि को लगाते हुए भी बुद्धि को परम धाम में शिव बाबा पर भी लगा सकते हैं। अगर ये काम थोड़ा कठिन भी हो तो श्रेष्ठ स्मृतियों में भी रह सकते हैं, वो बहुत सरल है, जिसकी हमने चर्चाएं की भी हैं, बाबा ने बहुत कुछ सिखाया है और आज भी चर्चा करेंगे। कौन बांधता है, कौन सी ऐसी बुराई है जिसके कारण कर्म आत्मा को बांधते हैं, क्यों बांधते हैं, सोचना है। कर्म तो मनुष्य निरंतर कर रहा है, किसी के कर्म उसके लिए बंधन है और किसी के कर्म उसे कर्मातीत अवस्था की ओर ले जाने वाले हैं। बहुत ही गुह्य विषय है। श्रीमद् भगवत गीता भी इस संबंध में हमें बहुत कुछ कहती है, खैर उसे तो आजकल कोई पढ़ता नहीं है और वो इतनी गुह्य है कि पढ़ने वाले उसकी गुह्यता को समझते भी नहीं है। स्वयं भगवान ने अब आकर जब सच्चा गीता ज्ञान दिया है तो ये बातें स्पष्ट हो गई, तो एक चीज समझ में आ गई, जहां कर्मों में मैपन है, जहां कर्मों में स्वार्थ भावना है, सेल्फिश मोटिवेशन, वो कर्म चाहे कितना भी श्रेष्ठ क्यों ना हो मनुष्य को बंधन में डालता है। कर्म में मनुष्य को दूसरों के साथ भी रहना होता है, उनके स्वभाव संस्कार भी बंधन डालते हैं। कर्म की अधिकता, दिमाग पर प्रेशर, लोड, ये भी बंधन डालते हैं। लेकिन ज्ञान के बल से जो अपने को हल्का करना जानते हैं और जो सर्वशक्तिमान शिव बाबा को साथ रख कर कर्म करने की कला जान लेते हैं भिन्न भिन्न तरीकों से, उनके कर्म उनको बांधते नहीं हैं। और श्रेष्ठ कर्म बहुत ज्यादा पुण्य देने वाले हो जाते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अच्छे काम तो कर रहे हैं, देखने में लगेगा कि बहुत पुण्य कर्म करते हैं, परंतु यदि उनमें मैंपन बहुत है तो वो पुण्य कर्म आधे ही रह जाते हैं। कई लोग कर्मों में दिखावा भी ज्यादा करते हैं, करेंगे थोड़ा वर्णन ज्यादा करेंगे। ये सब कर्म योगी आत्माओं के लक्षण नहीं हैं। तो कितनी बड़ी बहादुरी है, कर्म यहां कर रहे हो और बुद्धि परम धाम में शिव बाबा पर लगी हो, कर्म यहां कर रहे हो और स्मृति में अपना देव लोक हो, कर्म यहां कर रहे हो बुद्धि से स्वदर्शन चक्र घूम रहा हो, तो ये अपने में एक बहुत डिवाइन चीज हो जाती है। ऐसा यदि हम करते हैं तो कर्म बंधन कटते जाएंगे, योग की शक्ति से विकर्म विनाश होते जाएंगे और विकर्म नहीं होंगे। योग की यह भी एक सिद्धि है कि जब हमारा कर्म योग बढ़ता है तो जो सूक्ष्म विकर्म मनुष्य होते हैं उसकी उसे पहचान भी हो जाती है और वो अपने को उससे बचा भी लेता है। कर्मातीत की एक और ये परिभाषा है, कर्म के प्रभाव से मुक्त, साथ साथ कर्म के परिणाम के प्रभाव से भी मुक्त। ये कर्मातीत स्थिति है। अब कर्म के जो हमें परिणाम मिलते हैं एक्सपेक्टेशंस के अनुरूप या प्रतिकूल, अच्छा या बुरा, लाभकारी या हानिकारक, निंदा कराने वाला या स्तुति दिलाने वाला, सफलता की ओर ले चलने वाला या असफलता की ओर भी ले चलने वाला, तो इन सब का प्रभाव मनुष्य पर होता ही है। अब इन सब का प्रभाव ना हो इसके लिए भी बहुत अच्छी कर्म योगी स्थिति की आवश्यकता है। जब हम इस भाव से कर्म करते हैं कि करण करावनहार वो करा रहा है, साथ में एक और चीज की जरूरत पड़ती है, कर्म के परिणाम को भी जब हम बाबा पर अर्पित कर देते हैं तो कर्म के प्रभाव, कर्म के परिणाम के प्रभाव से मुक्त होने लगते हैं। ये बहुत बड़ी कला है। तो दो चीजें विशेष रूप से हमें ध्यान देनी है, जिन्होंने श्रीमद् भगवत गीता को कभी देखा है वो जानते होंगे, इन दो शब्दों का बहुत ज्यादा वर्णन आ गया है और बाबा के महावाक्यों में तो इनकी गुह्यता हम बहुत सुन चुके हैं। एक है समर्पण भाव। बाबा ने तो पीछे कह दिया, बच्चे अपने को मेरे हवाले कर दो। कितनी सुंदर बात है, अपने कर्मों को, अपनी समस्याओं को, अपने बोझ को मेरे हवाले कर दो। प्रैक्टिस करते होंगे आप सभी, और बढ़ानी है। कर्म निष्काम भाव से करो, बहुत सुंदर महावाक्य हैं। सेवा के फील्ड में मैंपन आया तो गुलदस्ता मुरझाया। सेवा का गुलदस्ता, संगठन का गुलदस्ता, परिवार का सुगंधित गुलदस्ता मुरझाने लगता है, क्योंकि मैंपन अहम को जन्म देता है, क्रोध को जन्म देता है। दूसरा सुंदर महावाक नोट करने योग्य है, मैंने तो नोट कर लिए थे तभी जब ये बोले गए थे। कर्मातीत होने में सबसे बड़ी दीवार स्वार्थ की है। बहुत सुंदर अव्यक्त महावाक्य है। तो बुद्धिमान ज्ञानी आत्माएं स्वार्थ भाव से मुक्त होते चलें, मैंपन को छोड़ते चलें, पहचानते चलें और कर्मयोग की एक सुंदर प्लानिंग करें, धुन लगाएंगे कि हमें कर्मातीत होना है, क्योंकि हमारी कर्मातीत अवस्था से युग परिवर्तन का गहरा नाता है। ये संसार भस्मीभूत होने वाला है, सब तो कड़े हैं पर भगवान के शब्द हैं। बाबा ने कहा जब तक इस पतित संसार को आग न लगे दुनिया पावन नहीं हो सकती। मैं तो सुनता हूं तो सोचता हूं केवल भगवान ही ये शब्द बोल सकता है। मनुष्य तो कहेंगे ऐसा बुरा शब्द तुम बोलते हो। तो कर्मातीत होने का नाता उस समय से भी है। बाबा ये भी चाहते हैं, अभी भी सबने देखा कि जब आपदाएं विपदाएं आए, जो मुरलियों में हम बहुत सुनते हैं कि युग परिवर्तन में सबसे बड़ी भूमिका एटम बम तो निभाएंगे ही, पर अर्थक्वेक्स भूकंप आदि ये बड़ी भूमिका निभाएंगे। तो हम सभी समय से पहले कर्मातीत हो जाएं, अच्छे धुन लगाने की जरूरत है। और जो मैं कह रहा था बाबा ये चाहते हैं कि जब आपदाएं विपदाएं आए तो मेरे बच्चे भी दुखी और परेशान न हो जाएं, वो सशक्त हों, समर्थ हों उन सब का सामना करने के लिए, बल्कि दूसरों को भी मदद करने वाले बन जाएं। तो चले हम इस सुंदर विषय पर आज चर्चा करेंगे। चर्चा ही नहीं, केवल आज से सभी कर्म में योग को जोड़ेंगे और बढ़ाते चलेंगे। कुछ कर्म हमारे पास ऐसे भी हैं जिनमें बुद्धि का ज्यादा प्रयोग नहीं है, लेकिन मन चलता रहता है, तेज भागता रहता है, यहां वहां की सोचता रहता है। हमें मन को कंट्रोल भी करना है, उसे एक अच्छी दिशा भी देनी है और योग युक्त रहने का अभ्यास भी करना है।
बहुत सुंदर बेटा जी, आपने बहुत सार रूप में हमें जो जो करना है वो सारी ही बातें रख दी। न स्वार्थ हो न मैंपन हो, लेकिन अपने आप को हम समर्पित करते चलें। सबसे गुह्य बात जो हम सबको अपने जीवन में लानी है। बेटा जी, शुरुआत चूंकि दादी का मास है और दादी का ये स्लोगन, दादी ने इस बात को बहुत धुन सी लगा दिए थे, और कल भी जो दादी की विशेषताएं हम रोज सुन रहे हैं उनमें कल भी ये विशेषता आ रही है कि दादी बिल्कुल निर्बंधन थी, निर्संकल्प थी, न्यारी थी। कर्म करते हुए भी कैसे अतीत रहा जाता है, या कैसे बहुत सारी विघ्न भी आए तो भी कैसे उसके प्रभाव से मुक्त रहा जाता है, ये दादी जी ने सबको सिखाया। फतेह जी, आप ताउम्र दादी जी को आपने देखा, कर्मयोगी दादी जी कैसे थे और जब कर्मातीत अवस्था के नजदीक थे तब कैसी थी, क्या डिफरेंस आपने देखा?
देखिए, कर्म योग तो एक सूक्ष्म प्रैक्टिस है जो करने वाला ही समझ सकता है, क्योंकि बाबा व्यक्त हुए, दादी और दीदी यज्ञ की हेड बनी, निमित्त हुई, तो बहुत बड़ा कार्य संभालना पड़ता था। न केवल मधुबन यज्ञ, लेकिन सभी सेंटर, सभी बहने भाई जो समर्पित हैं, आने वालों की बहुत केयर की जाती थी। छोटा परिवार था तो अंदर में बहुत अच्छी स्मृतियां उनको रहती थी, जिसका वर्णन करती थी, मुझे ख्याल रहता है मैं पूर्वज हूं, मुझे सबको देना है, ये स्मृति अपने में बहुत सुंदर है। दादी को इरिटेट होते नहीं देखा गया था, मिलने वाले आते थे। और एक विशेष चीज मैं देखता था, देखिए जब कोई व्यक्ति एडमिनिस्ट्रेशन का हेड होता है तो अनेक तरह के लोग उसके सामने आते हैं, कोई समस्या लेकर आएगा, कोई गलती करके आएगा, कोई अपनी गलती को रियलाइज भी नहीं करेगा, बहस करेगा। एक बहुत बड़ी क्वालिटी, एक घटना का प्रभाव दूसरे पर न पड़े। अब मान लो उसके बाद मैं गया मिलने, तो ये नहीं उसका प्रभाव मेरे मिलन पर भी पड़ रहा है, मेरा मिलन अलग, तो ये जल्दी ही स्वयं को बदल लेना, लौकिक भाषा में जिसे कहते हैं मूड बदल देना, स्थिति बदल देना, ये बहुत बड़ी कला थी इस महान आत्मा में। तो भिन्न भिन्न तरह से मैं तो देखता था कि मुरली में रस भर देती थी दादी, और हम समझते थे एक चीज से कि उन चीजों पर अंडरलाइन कराती थी जो मुरली में बाबा पुरुषार्थ के लिए कह रहे हैं। इसे समझ में आता था कि उस चीज पर दादी जी का विशेष अभ्यास है। मान लो मुरली में आया कि सवेरे उठते ही अभ्यास करो, मैं आत्मा परम धाम से इस तन में अवतरित हुई हूं। रुक जाती थी, क्या सुना, दो चार से पूछती थी, सबको करना है ये अभ्यास, अंडरलाइन कराती थी, तो स्पष्ट होता था वही व्यक्ति ये सब करा सकता है जो स्वयं करता हो। तो बहुत अच्छे अभ्यास दादी जी करती थी, बाबा मेरे साथ है, और समर्पण भाव का तो बहुत ज्यादा अभ्यास था। इसलिए दादी कहा करती थी कि मैं तो रात को जाकर जैसे ही तकिए पे सिर रखती हूं और बस फट से सो जाती हूं। बहुत बड़ी क्वालिटी है कि सारे कार्यों का बोझ तो होता है, कोई ये नहीं कह सकता कि बोझ नहीं होता है, समर्पित करके एकदम बाबा में विश्वास करके शांत कर देना अपने को, रिलैक्स हो जाना, ये उनके कर्म योगी जीवन के लक्षण थे। लास्ट में तो क्या था, तबीयत थोड़ी ढीली थी, एकांत में ही थी, सब कुछ देखना बंद कर दिया था, एक बार तो आंखें भी बंद कर ली थी थोड़े लंबा समय, कुछ भी सुनना बंद कर दिया था, अंदर में एक धुन लगा दी थी, कर्मातीत होना है तो केवल इस धुन से काम तो नहीं चलेगा, तो निश्चित रूप से वे बहुत अच्छा योग युक्त रहने लगी थी। हमने ये स्वयं देखा, उनको शांत, जैसे कहीं मगन हो, किसी से कोई नाता नहीं, अब फील हो गया था कि मेरे जाने का समय आ गया, तो अपने को पूरी तरह डिटैच कर लिया, तो ये स्वरूप उनका था बहुत सुंदर, इसलिए उन्होंने सभी के मन को मोह के रखा हुआ था।
जी जी, आपने ब्रह्मा बाबा को भी, उनके बाबा के कर्म योग के अभ्यास को तो हम सुनते हैं, बाबा मुरलियों में भी कहते हैं, और ये भी सौभाग्य रहा कि आपने उस अवस्था में बाबा को देखा जब बिल्कुल बाबा कर्मातीत स्थिति में थे। बाबा की वो स्थिति कैसी थी?
देखिए, हम तो तब छोटे थे और हमें क्या पता था कर्मातीत अवस्था क्या होती है, सच्ची बात तो यही है, लेकिन बाबा के महावाक्यों से समझ में आता था। बाबा के चेहरे पर जो ग्लो होता था ना, उसे थोड़ी थोड़ी कुछ चीज समझ में आती थी, और लास्ट के दो ही साल तो बाबा बहुत ज्यादा एकांत में रहते थे, क्योंकि मधुबन में पार्टियां भी तो उन दिनों ज्यादा नहीं आती थी, साल में दो बार ही आती थी, रिमझिम भी अच्छी लगती थी बाबा को, लेकिन एकांत और शांति का समय बहुत मिलता था। तो अशरीरी होने का बहुत ज्यादा अभ्यास किया, और शिव बाबा से योग युक्त होने का तो कई सालों से बहुत ज्यादा अभ्यास था। ब्रह्मा बाबा वो पहली आत्मा थी है जिन्होंने वो सब कुछ साथ साथ किया जो शिव बाबा ने कहा, देर नहीं लगाई उसमें। तो हम समझ पाए या नहीं समझ पाए, जो शिव बाबा ने पुरुषार्थ या अभ्यास सिखाया वो तुरंत प्रारंभ कर दिया, इसलिए नंबर वन करने में रहे तो नंबर वन स्थिति को पहुंच गए, तो बहुत हल्के हो गए थे, देखने वालों को भी फरिश्ता लगने लगे थे, यहां से उपराम है, यहां से जैसे उनका कोई नाता नहीं है, किसी तरफ आकर्षण नहीं है, यानी वो आत्माएं, वो बाबा के बच्चे जो उन्हें बहुत प्यार करते थे, जो उनके बिना रहना नहीं चाहते थे, उन सबको सेवा पर भेज दिया था और बहुत डिटैच स्थिति में रहने लगे थे।
जी, दीदी को भी उन्होंने सेवा में ही भेज दिया कि दीदी नजदीक ना रहे, क्योंकि शायद सबसे ज्यादा नजदीक दीदी ही,
सबसे ज्यादा नजदीक दीदी थी, तो इलाहाबाद में कुंभ मेला था, वहां भेज दिया, संपूर्ण एकांत कर लिया।
जी व्रता जी, मैं इसलिए दादी और बाबा की बात से शुरुआत की क्योंकि दादी और बाबा दोनों ही यज्ञ को पूरी तरह संभालने वाले, चाहे वो इंटरनल हो एक्सटर्नल हो, सेवा केंद्र हो, इतनी बड़ी जिम्मेवारी होते हुए भी कर्मयोगी रहना और ऐसे कर्मातीत अवस्था को पाना, क्योंकि ज्यादातर लोगों का ये प्रश्न है कि हमारी लौकिक जिम्मेवारियां इतनी हैं, ये हैं, तो हम कर्मयोग का अभ्यास करना भी चाहते हैं लेकिन वो स्थिति बनती नहीं। तो बाबा और दादी में ये क्या ऐसी चीज थी, आपने समर्पणता के द्वारा तो कही कि ये सब करते हुए भी बिल्कुल कर्मयोगी स्थिति और कर्मातीत अवस्था।
देखिए, लौकिक में और यज्ञ में एक बहुत बड़ा अंतर है। लौकिक में एक पिता है, उसको मान लो 4-5 बच्चे हैं
जी,
उसको उनकी चिंता रहती है पढ़ाई की, वो योग्य हैं या नहीं, उनकी शादी ब्याह, उनको सेट करना, अगर थोड़ा मन मुटाव है बच्चों में उसका भी इफेक्ट आता है। और यज्ञ में बाबा के लिए क्या है, बाबा फुल अथॉरिटी थे, चिंता कोई नहीं, खिलाने वाला ऊपर बैठा है, खिलाएगा ही, कमाने तो किसी को जाना नहीं है। दूसरा कारोबार जो होता था बाबा करा रहा है, बहुत हल्कापन हो जाता है इन चीजों में। हम भी देखते हैं, हम लोग भी बड़े कार्य कर रहे हैं लेकिन जैसे हम पे उनका बोझ नहीं है। दुनिया में यही कोई काम बड़े करे तो टेंशन में रहेगा, ये चीज कहां से आएगी, अरे ये चीज कम हो गई, इस चीज का कहां से इंतजाम करें। तो यज्ञ को चलाना और लौकिक परिवार को चलाना, इसमें दोनों में थोड़ा अंतर हो जाता है। लौकिक परिवार में मनुष्य बहुत ज्यादा अटैच होता है परिवार से, और यहां हमारी प्रैक्टिस ये है डिटैच होने की
जी, मेरा कुछ नहीं,
मेरा कुछ नहीं, बाबा कर रहा है। और जैसे जैसे आत्मा को ये प्रैक्टिकल में फील होने लगता है, अनुभूति हो जाती है कि एक्चुअली हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ये सब काम ऊपर से हो रहा है, तो और हल्कापन हो जाता है, तो निमित्त बनकर विद एंजॉयमेंट कर्म करने लगते हैं। तो अगर गृहस्थ में रहने वाले भी एक सरल सी प्लानिंग बना ले जिसपे हम आएंगे, तो धीरे धीरे सब काम सरल हो जाएगा और योग युक्त जीवन भी हो जाएगा।
जी जी, जिसकी बात आप हमेशा करते भी हैं और बाबा भी याद दिलाते हैं कि अपने घर को भी हम सेवा केंद्र समझें, यज्ञ समझें, बाबा का भंडारा है, भंडारी है और वही करा रहा है। यदि ये फीलिंग गहराई से आ जाए तो शायद ये जो यज्ञ में हम हल्के रहते हैं वैसा ही हल्कापन आ जाए। तो एक बात रहते जी, हम लोगों ने इस बार चार्ट में यही रखा है जो आपने भी मेंशन किया कि करण करावनहार बाबा हैं, मैं करणहार हूं। ये बाबा ने कहा करण करावनहार जो शब्द है यही आपको कर्मयोगी बना देगा। तो ये करण करावनहार की गहरी फीलिंग अनुभूति, क्या ये अभ्यास है या एक स्मृति है या जस्ट एक समझ है?
तीनों चीजें हैं इसमें। समझ भी बहुत बड़ी चीज होती है जिसको विवेक कहते हैं, कि संगम युग पर दुनिया में सारा काम नहीं वो करा रहा है, अपने बच्चों से जो युग परिवर्तन का महान कार्य है उसमें वो करा रहा है। कोई ये नहीं कह सकता पुरुषार्थ हम तो नहीं करेंगे बाबा करा देगा, ये नहीं। जो कर्म है वो बाबा उसमें मदद कर रहा है, उसके लिए उसने गाइडलाइन दी है। देखिए, सबसे बड़ी चीज होती है सिखाना। एक बाप अपने बच्चे को सिखा दे बिजनेस ऐसे ऐसे बढ़ाना है, ऐसे ऐसे करना है, तो बच्चे को लगेगा ना उसने कराया है मेरे से। तो बाबा गाइडेंस भी दे रहा है, संपूर्ण ज्ञान, साथ में शक्तियां भी दे रहा है। तो ये विवेक भी बहुत आवश्यक है। और दूसरा ये विवेक आवश्यक है कि अगर हम उस पे समर्पित कर देते हैं सब कुछ तो वो किस तरह मदद करता है, इसको अनुभव युक्त समझ हो। केवल ये नहीं कि हमने सब कुछ छोड़ दिया उस पर खुद कुछ भी नहीं करेंगे। कई लोग इसकी गहराई को समझते नहीं हैं। तो समर्पित भाव के साथ साथ कर्म में तत्परता, पूरी लगनशीलता, इसकी बहुत आवश्यकता है
जी।
और फिर जब प्रैक्टिस होती है तो हम ये प्रैक्टिस करेंगे, मैं आत्मा शरीर द्वारा करा रही हूं, ऊपर से बाबा की शक्तियां मुझे मिल रही हैं। दोनों अभ्यास करना होगा, मैं कराने वाली कर्मेंद्रियों से जिम्मेदार हैं, तो बाबा की शक्तियां, उसका विवेक, उसका सहयोग भी मुझे मिल रहा है। लेकिन इन सब की अनुभूतियों के लिए एक अच्छी और थोड़ा लंबे समय की प्रैक्टिस, और भिन्न भिन्न परिस्थितियों में ऐसा अभ्यास करके क्या होता है इसकी अनुभूति आवश्यक है।
जी जी, मतलब एक हमारा पुरुषार्थ भी बहुत जरूरी है। करण करावन हार का ये अर्थ नहीं हुआ कि वही सब कुछ करा देंगे, जैसे बीमार हैं तो डॉक्टर के पास हमें खुद ही जाना होगा, बाबा ही ऊपर से कर दें, ये वाली
नहीं,
बात
ये गलती कई लोग करते हैं। बीमार हैं, बाबा से बड़ा कौन डॉक्टर है। अरे मैं कहता हूँ बाबा की मुरली में तुम इतना ही सुना है, वो सबसे बड़ा, आगे का नहीं सुना कि मैं तुम्हारी बीमारी ठीक करने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हारी आत्मा को ठीक करने आया हूँ, बीमारी है डॉक्टर के पास, ये सुना नहीं है। तो कई लोग ध्यान नहीं देते इन चीजों पर, तो थोड़ा ज्ञान को ठीक से समझना भी आवश्यक होता है।
बिल्कुल बिल्कुल, नहीं तो कई बार सर्विस की बजाय डिसर्विस हो जाते हैं और हम भी सोचते हैं कि बाबा मेरी मदद नहीं कर रहे हैं। पता जी, जो आपने कर्म योग की बात जो आपने पूरी अपने जीवन में उतारी है, उन्हीं में से जो चार्ट आप हमेशा हम सबको देते हैं, वो एक चार्ट सभी को भेजा गया है, अमृत वेले से लेकर रात्रि तक आप किन किन किस किस प्रकार से अलग अलग कर्मों के साथ अभ्यास करें। कई बार हम कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं, है तो सही कि हमें इस कर्म में ये अभ्यास करना है, सारे कर्मों के लिए दिए हैं, लेकिन कई बार वो या तो विस्मृत हो जाता है या फिर उसकी वो डेप्थ हम फील नहीं करते, तो वो गहराई कैसे आए और वो सहज स्मृति में कैसे रहे।
देखिए, मैं ये जो दिनचर्या आपको भेजी गई है इसके पीछे का राज बता देता हूं। मेरे को तो लगन थी बहुत श्रेष्ठ योग की। 18 जून मुझे डेट भी याद रहती है, 1970 की मुरली चली बाबा की। उसमें बाबा ने कहा, जैसे बड़े आदमी अपना दिनचर्या बना लेते हैं ना, अब यहां जाना, इसलिए उसको कहते हैं मिनट टू मिनट प्रोग्राम।
जी,
ऐसे ही तुम सबसे बड़े हो इस संसार में, तो अपनी मन बुद्धि का ऐसा ही टाइम टेबल सेट करो। तो मुझे बहुत लगन थी और तब तक योग के बारे में बहुत सारी बातें हमें ज्ञात हो चुकी थी, तो मैंने हर घंटे वाइज ये टाइम टेबल बना दिया और 6 मास तक तो पूरी तत्परता से उसको अभ्यास में लाया, तो बहुत अच्छे अनुभव हो गए। और ये जो बाबा के महावाक्य कहते हैं कि कर्म या करो बुद्धि लटकी रहे ऊपर, ये सब मेरी प्रिय चीजें थी। बुद्धि से, बुद्धि तीसरा नेत्र है, उससे शिव बाबा ही दिख रहा है या उसकी किरणें आ रही है, नीचे काम कर रहे हैं। तो इसमें ये तो कहना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ती है। मैंने भी अपना 69 का साल, 70, 71, 72, 73 चार पांच साल बहुत अच्छी अपने से मेहनत की थी। योग तो पहले ही बढ़ गया था, लेकिन उसको स्थायी करना, परमानेंट करना, इसकी बहुत आवश्यकता थी। मैं ये नहीं चाहता था आज मेरा योग इतने घंटे पहुंच गया तो कल डाउन हो जाए, अब वो आगे बढ़े। तो कर्म योग के लिए मैंने बहुत अच्छी एक बात अपनी बुद्धि में रख ली, वो बाबा के महावाक्यों से ही मिली कि बुद्धिमान वही है जो अपनी बुद्धि को एक पर स्थिर कर सके। तो बुद्धि योग जहां जहां जाता था उसको हटाते थे वहां से, ये प्रैक्टिस हमें करनी ही पड़ती है।
जी,
महसूस हुआ कि ये गलती हुई, इससे बुद्धि योग टूट गया, ये अवेयरनेस थी बहुत ज्यादा, तो गलती को करेक्ट करना था। मान लो किसी के अवगुण देख लिए, दिख गए, देख क्या लिए, कोई गुस्सा कर रहा हो, थोड़ा सा चिंतन चल गया, बड़ा गुस्सा करता है, इतने साल से ज्ञान में फिर भी सुधार नहीं आया, तो योग टूटा। तो दादी जानकी की बहुत अच्छी बात मिली, दादी जानकी यहाँ बाबा के अव्यक्त होने पे ज्यादा समय रहती थी। अब गुण दूसरे का, मुसीबत हमारी, मुझे बहुत प्रिय लगी। अरे अब गुण उसका, बुद्धि योग हमने तोड़ लिया, नुकसान हमने कर लिया। ये चीजें मैं देखता गया और चेंज करता गया, समझ में आती गई कि अगर बुद्धि योग को स्थिर करना है तो क्या क्या छोड़ना पड़ेगा। तो मनुष्य को मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि इससे प्राप्तियां बहुत बड़ी है। और मैं प्राप्तियों के लिए सभी गृहस्थ वालों को या कुमार कुमारियों को एक बात कहूंगा कि अगर योग युक्त स्थिति बना ली जाए, उसकी मेहनत करनी कर ली जाए, तो संसार की और सारी मेहनत खत्म हो जाएंगी।
जी जी,
चाहे वो धन कमाने की हो, चाहे अच्छे मार्क्स लाने की हो, चाहे इंटरव्यू में सफल होने की हो, चाहे प्रमोशन की हो, कुछ भी हो।
संडे की मुरली में भी यही बात ब्रदर जी बाबा ने कही कि यदि बेहद की जिम्मेवारी अपना लो तो हद की जिम्मेवारियां बहुत सहज हो जाएंगी। तो बहुत ही एक गहरी सी बात है जो बात अभी आप कह रहे हैं। तो ब्रदर जी, एक जो चीज आपने इतने लंबे समय तक जो कर्मयोग का सुंदर अभ्यास किया, हम भी इसमें डूबें लगें, क्या लगता है आपको कितना वक्त लगा कि ये बिल्कुल नेचुरल हो गया, और हम कितना वक्त ऐसे दे दें, अच्छी मेहनत कर दें फोकस्ड होके, ताकि हमें भी इसका टेस्ट आ जाए, गहराई आ जाए, स्थिरता आ जाए।
देखिए, हर एक के जो माइंड है, ब्रेन है, बुद्धि का लेवल है, उस अनुसार मनुष्य को इस फील्ड में सफलता मिलती है। कोई एक दिन में कैच कर लेता है बहुत चीजों को, किसी को वही चीजें कैच करने में साल लग जाते हैं। तो हमारा पास्ट का जीवन कैसा रहा, हमारी प्योरिटी कैसी रही, हमारा अटेंशन कितना ज्यादा है, लक्ष्य को हमने कितना पावरफुल किया है जीवन में कि मुझे ये बनना है, क्योंकि इस लक्ष्य को पाने के लिए कई और चीजें बाधक होती हैं, जैसे दूसरों को देख लिया, अरे ये योग तो करते नहीं पर इनका नाम तो बहुत है,
हम फालतू योग कर रहे हैं,
हम बिना मतलब ही योग करते हैं। मुझे लोग कहा करते थे, तुम योग योग करते रहोगे, योगियों को कौन पूछता है, देखो उसे
कितने आगे निकल गए,
बड़ों के साथ रहते हैं, बड़े भी उनसे राय लेते हैं, तुम्हें कोई पूछता है? अब मैं सोचता था, यार भगवान तो कुछ और कहता है, मुझे उस पर ध्यान देना चाहिए, या बात तो ये भी ठीक लगती है, दिखाई देती थी, देती हम छोटे थे, बहुत बड़ी आयु तो नहीं थी,
और वो आकर्षण भी है, उसमें कि स्टेज है, सम्मान है, मान
तो है। ये फिर धीरे धीरे, लेकिन एक चीज समझ में आती थी बहुत अच्छी
जी,
जो मुझे इस मार्ग से विचलित नहीं कर सकी, कि योग में सुख बहुत ज्यादा मिलता था, तो मुझे ये सुख खींचता था कि ये सब तो ठीक है चलो, लेकिन मैं योग छोड़ के ये करने लगूं तो वो मुझे भाता नहीं था, बहुत सुख मिलना। और किचन में थे तो बाबा के महावाक अच्छे अच्छे मिले, बाबा का प्यार बहुत मिला हमें, अव्यक्त बाबा स्पेशल बुला के मिलते रहते थे हम सबसे, हम पांच ही थे किचन में
जी,
बस
जी।
बोली दादी थी, दो तीन हम भाई थे, एक और बहन थी, तो बहुत अच्छी तरह मिलते थे। तो समझ में आता था यार, देखो दोनों, जब छोटा मनुष्य होता है उसकी विवेक शक्ति इतनी तो विकसित नहीं होती, तो वो भी आकर्षण लगता था और इधर भी। एक ने मेरे से पूछा, देखा आया हमारे पास जगदीश भाई थे, रमेश भाई थे, जो बड़े प्रसिद्ध थे, दूसरे हमारे यहाँ विश्वधन दादा थे, जो यज्ञ में रहते थे, वो पुराने थे, शांत अपना नम्रचित सेवा कुछ भी कर रहे हैं, रोटी पका रहे। तुम्हें से किसी ने पूछा, तुम रमेश भाई की तरह बनना चाहते हो या विश्वधन दादा की तरह? सच होता हूँ, शुरू किया है अब भाई, रमेश भाई, जगदीश भाई, वो तो बहुत बड़े आदमी थे, हमने कहा वो तो भाई हम न बन सकते, उनका अपना फील्ड है, पढ़े लिखे हमसे बहुत ज्यादा हैं। हाँ, विश्वतन दादा हमें पसंद है, क्योंकि हम जुड़े भी उनसे हुए थे, वो हमारे कंट्रोलर थे, तो मैंने कहा विश्वतन दादा जैसा तो बन जाएंगे। तो ये ऐसी चीजें हैं, तो मनुष्य को कम से कम 6 मास अच्छी मेहनत करनी चाहिए, और उन सब चीजों को छोड़ना पड़ेगा जो इस मार्ग में बाधक है। ये इम्पोर्टेंट चीज होती है, माया के भिन्न भिन्न रूप है ना, कहीं देह का आकर्षण होगा, कहीं धन की ओर आकर्षण होगा, कोई तो ये भी सोचेंगे यज्ञ में उसका ही तो महत्व है, जिसके पास पैसा ज्यादा है, गरीबों को कौन पूछता है, झाड़ू पोछा करते रहो, कौन पूछेगा तुम्हें। लेकिन अगर सब कुछ भूल कर योग तपस्या हमारी मुख्य चीज है, इस लगन में एक प्लानिंग के साथ आगे बढ़ा जाए और 6 मास डेडिकेट कर दिया जाए अपना समय
जी,
वही धुन लग जाए। और धुन भी कर्मातीत की बात तो खैर अलग है, वो तो बहुतों को समझ में नहीं आएगी, पर मुझे अपना योग का चार्ट सारा दिन 8 घंटे तक पहुंचाना है, थोड़ा बैठकर, मैं ज्यादा बैठने कोई राय कभी नहीं देता, 2 घंटे बैठे हैं आप। एक व्यक्ति आया था कल परसों, ही कहा मैं तो 4 घंटे बैठता हूं, मैंने उसे बहुत समझा लगातार न बैठना, कहा मैं तो बैठ जाता हूं, मैंने कहा इसका हेल्थ पे बुरा असर आएगा, बैक पेन हो जाता है तो आप चार बार अगर आपको लगा नहीं है बैठो योग अच्छा लगता है तो एक एक घंटा करके सारे दिन में चार बार चाहिए हो सकता है। तो कर्म में भिन्न भिन्न स्मृतियों को जोड़ना, कुछ बैठ के योग करना, अमृत वेला अच्छा हो जाए, शाम के समय भी एक घंटा योग अच्छा हो जाए, तो फिर छह मास अगर कोई मेहनत कर ले विद प्लानिंग तो मंजिल सहज हो जाए।
बिल्कुल बिल्कुल, छह मास तो आसानी से सभी वैद्य जी लगेंगे। और जैसे आपने कहा कि एक बार रस लग जाए, जैसे आपको लग गया तो फिर सब चीजें फीकी लगने लगते हैं। और आप हमेशा एक बात कहते हैं, मुझे अच्छी लगती है बाबा के महावाक्य, किसे भगवान सम्मान देता हो उसे और किसी चीज के सम्मान किया, किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। और ये बहुत सच है।
और एक चीज और होगी
जी,
अगर किसी को योग का रस लग जाए तो बाबा की साकार मुरलियों से ही उसे योग करने की अच्छी अच्छी बातें मिलने लगेंगी। वो मुरलियों में सब है
जी,
व्यक्ति में तो है ही, पर साकार मुरलियों में भी बहुत गहरी गहरी बातें बाबा ने कह दी है, वो कैच होने लगेंगी और फिर जीवन में बहुत रस आएगा।
और यही कह रहे हैं बता जी, इस पूरे मास आपने छह मास की बात कही है, जरूर इसे हर बार हम प्लान में तो रखते ही हैं चार्ट में कि अपने योग के चार्ट पे ध्यान दें। इस मास भी एक एक हफ्ते के लिए सभी के पास कर्म योग के सुंदर चार्ट जो आपने हमें प्रदान किए हैं और आपके अभ्यास से ही जुड़े हुए हैं, जो वो सबको हम प्रेषित करेंगे और इसका अभ्यास अभी कर रहे हैं। एक बात बता जी, जो हम कर्मातीत स्थिति की बात करते हैं तो जैसे हम बिंदु रूप अवस्था का अभ्यास करते हैं, उसका अनुभव करते हैं, फरिश्ते स्थिति का भी हम अनुभव करते हैं, तो ये कर्मातीत अवस्था लास्ट इसके स्टेज है या अभी भी हम उस अवस्था को अनुभव कर सकते हैं?
देखिए, फाइनल कर्मातीत अवस्था तो लास्ट की है, क्योंकि कर्मातीत होने के बाद आत्मा इस शरीर में नहीं रह सकती, लेकिन उससे पहले लंबा काल हम ये अनुभव करें कि मैं आत्मा इस देह से न्यारी हूं और जब चाहे परम धाम में स्थित हो जाएं, जब चाहे देह में अवतरित होकर कर्म करें, यानी हम अपने कंट्रोल में हों, सीधी भाषा में यानी कर्म हमें बांध नहीं रहे, परिस्थितियां हमें अफेक्ट नहीं कर रही हैं, संबंध हमारी स्थिति को डाउन नहीं कर रहे हैं, हम एलिप्स हो गए हैं, ये कर्मातीत अवस्था का प्रैक्टिकल स्वरूप है। इसलिए कुछ आत्माओं का पाठ ऐसा है जो कर्मातीत अवस्था के समीप रहकर थोड़ा लंबा समय सृष्टि पर रहेंगी ताकि उनके द्वारा विश्व का कल्याण हो सके।
जी जी, लेकिन अभ्यास हमारा उस अनुरूप जरूर चलता रहे। एक बात मेहता जी, जो बाबा की महावाक्यों में है, जो हमारी चार्ट में भी इस बार है कि कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने के लिए अपनी कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाओ, स्वराज्य अधिकारी बनो, रोज ही अपना दरबार लगाओ। ब्रह्मा बाबा ने भी रोज अपना दरबार लगाया, तो हमें रोज अपना दरबार लगाना है। तो ये दरबार लगाने का स्वरूप एक ही जैसा है या इसमें विविधता हो सकती है?
देखिए, रोज तो दरबार कोई लगा नहीं पाता, ठीक है हम भी लगाते हैं पर रोज नहीं हो पाता, क्योंकि मन को वैरायटी चाहिए
जी।
कभी हमारे सारे दिन कोई स्थिति रही, कभी हम कुछ और अभ्यास कर रहे, तो सदा वो अभ्यास नहीं रहेगा। लेकिन मैं स्वराज्य अधिकारी हूं और मन बुद्धि का मालिक हूं, ये अगर हम फीलिंग ही अपने अंदर लाते रहे, मैं मालिक हूं, तो हे मेरे मन मैं तुम्हारा मालिक हूं, तुम इधर उधर नहीं भागो, मेरी आज्ञा का पालन करो, ये हम उसे कमांड देते रहेंगे तो उसका भाग दौड़ धीरे धीरे कम होती जाएगी। बाकी डिपेंड करेगा किसने अपने मन को कितने समय से और कहां कहां भगाया हुआ है। कईयों ने बहुत विचलित कर दिया अपने मन को, ये सोशल मीडिया के कारण और ज्यादा विचलित कर दिया है। इसलिए मनुष्य को थोड़ी ये मेहनत करनी चाहिए पहले अशरीरी होने की। जिसको सब कुछ कठिन लगता हो वो अशरीरी होने की प्रैक्टिस सहज भाव से कर सकते हैं। भले 15 दिन इसकी धुन लगा दो, योग को भी एक तरफ रख दो और सब चीजें भी छोड़ दो, मैं आत्मा यहां बैठी हूं एक स्वमान कोई रख लो, उसको याद कर लेना तो रस आता रहेगा। मैं इस देह में आई हूं, ये देह अलग है, मैं अलग हूं, मैंने ऐसे अनेक देह लिए, अनेक छोड़े हैं, कभी नर रूप में कभी नारी रूप में। मैं एक बात हमेशा जोड़ रहा हूं इन चीजों में, चिंतन परम आवश्यक है। बुद्धि से हम विजुअलाइज तो करेंगे लेकिन मन अगर चिंतन नहीं कर रहा है तो हमें सुंदर अनुभव नहीं होंगे। तो हम इस तरह, ये मैंने चिंतन बताया भाई, ये देह छूटेगा, नया मिलेगा, कितने देह लिए हैं, छूटे हैं, 84 का खेल पूरा करते करते आत्मा यहाँ आ गई है, ये चिंतन है, इससे हमारी स्थिति अच्छी हो जाएगी और हम उस स्थिति की ओर तेजी से आएंगे।
जी जी दादाजी, इसीलिए जो आपने कहा कि अशरीरी होने का अभ्यास, आने और जाने का अभ्यास, इसे भी चार्ट में दिया गया है, क्योंकि बाबा की ये प्रैक्टिस बहुत गहरी थी जिसने उन्हें इस प्रकार से कर्मातीत अवस्था की ओर आगे बढ़ाया। एक बात कही जाती है, लेकिन इससे पूर्व दादाजी, जैसे हमने एक बार दरबार की बात कही है कि कम से कम एक बार लगाएं, तो क्या ये चेकिंग नहीं हो जाती कि हम अपने आप को देख पाते हैं कि हाँ मन की क्या स्थिति है, बुद्धि की क्या स्थिति है, कर्मों की क्या स्थिति है?
बिल्कुल, इसको मैं कहूंगा रात को न लगा के,
हाँ
थोड़ा दिन में लगा लें कभी कभी हफ्ते में एक बार, क्योंकि रात का समय क्या होता है, कईयों को थकान होती है, कई थोड़ा मनोरंजन में लग जाते हैं, परिवार वाले अपने बच्चों से मिलने जुलने में लग जाते हैं, किसी किसी को थोड़ी प्रैक्टिस होती है, मुरली पढ़ के सो जाएं, कुछ अच्छा अभ्यास करके सो जाएं, इसलिए सवेरे लगा लें दरबार, क्योंकि मन का तो अपने पता ही है, सवेरे लगा लें, इवनिंग इस टाइम लगा लें और चेक कर लें मन कहाँ कहाँ भागता है। बुद्धि की चेकिंग भी जरूरी कि मैंने अपनी बुद्धि में क्या क्या भरा है। बुद्धि में है ज्ञान, ज्ञान की धारणा बुद्धि में हो रही, मैंने दुनियावी ज्ञान में भी क्या क्या भर लिया है, कोई कहीं कोई गलत मान्यता तो नहीं भर ली, जैसे गलत मान्यता मैंने चर्चा में लाया, गरे यज्ञ में उसका ही महत्व है जिसके पास पैसा है। अब ये गलत विचारधारा बुद्धि में भर ली, ये विचारधारा वो नहीं करने देगी जो हम करना चाहते हैं, फिर धन के पीछे हम लग जाएंगे और धन से तो कोई हम पावन बनेंगे नहीं, हमारी योग युक्त स्थिति बनेगी नहीं।
जी
तो मन कहाँ कहाँ भटक रहा है, एक बार अच्छी तरह चेकिंग कर लें, उसको डायरेक्शन दे दें, तुम्हें यहां नहीं जाना है, यहां जाना है, केवल चेक करना काफी नहीं है, दुनिया में भी ये विधि है, मन को ऑब्जर्व करो कहाँ कहाँ जा रहा है, पर ये काफी थोड़ा ही है, डायरेक्शन भी दो, यहां नहीं जाना है ये सोचना है अब तुम्हें, तो इस तरह करने से एक आदत भी बन जाएगी, याद भी रहेगा और
धीरे धीरे कंट्रोल भी होता चला जाएगा। एक बात बाबा ने कर्मयोगी की परिभाषा के लिए कही है कि कर्मयोगी अर्थात निरंतर निर्विकल्प समाधि में रहने वाले, तो एक बहुत ऊंची मंजिल की बात कही।
ये देखो महर्षि पतंजलि ने इसको लास्ट स्थिति बताया है, उसने भी ये शब्द यूज किया, निर्बीज स्थिति, निर्संकल्प समाधि, दूसरा शब्द भी यूज किया, सविकल्प समाधि, यानी कुछ संकल्प भी हैं, बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन समाधिस्थ हैं, तो यही बाबा ने शब्द यूज किया, बीज रूप ही निर्संकल्प समाधि है और हम अभ्यास करते करते उस समाधि में रह सकते हैं। इसके लिए यही करना होगा, कर्म यहां कर रहे हैं, बुद्धि ऊपर स्थिर है, जैसे बुद्धि शिव बाबा से रस ग्रहण कर रही है, कर्म यहाँ कर रहे हैं, ठीक है सारा समय न भी हो, बीच बीच में इसका अभ्यास अवश्य कर लेना चाहिए।
जी कर्म के बारे में दो बातें बाबा हमेशा कहते हैं, एक तो कर्म बंधन और दूसरा कर्म संबंध, तो कर्म बंधन बंधन कब हो जाता है और इसे हम कर्म संबंध सहज कैसे बनाएं?
देखिए कर्म से हमारा संबंध है, हम जुड़े हुए हैं कर्म से, तो कर्म तो हम कर ही रहे हैं, उसका अगर इफेक्ट हम पर नहीं होता है तो वो कर्म संबंध कहलाया जाता है, और कर्म अगर हमारी स्थिति को बिगाड़ रहा है, जैसे सेवा भी कईयों की स्थिति को बिगाड़ देती है, परेशान कर देती है, न जाने क्या क्या सोचने लगते हैं, वो कर्म बंधन हो जाता है। जैसे दादियों के लिए लोग पूछते हैं ना, बाबा ने कह दिया था ये आत्माएं कर्म बंधन से मुक्त हुई, लेकिन बाबा ने इनको कर्म संबंध में भेजा है, कर्म संबंध का अर्थ है कि कुछ विशेष सेवाएं
जी
आगे इन आत्माओं के द्वारा करानी है, तो ये कर्मों के हिसाब किताब चुकतू करने के लिए किसी परिवार में नहीं जन्मे हैं, लेकिन ये महान सेवा करने के लक्ष्य से परिवारों में जन्मे हैं, इसको कर्म संबंध कहा जाता है।
जी जी बाबा ने कहा है कि अगर कर्मातीत होना है तो तुमसे सूक्ष्म विकर्म भी ना हो, तो आजकल आप क्या देखते हैं बेटा जी, कौन से सूक्ष्म विकर्म होते रहते हैं जिनका कई बार बोध भी नहीं होता?
अब क्या मैं तो कम देखता हूँ ये चीजें, फिर भी
लोग आपसे बहुत पूछते हैं ना कि हम भारी हैं, फिर आप उनको बताते होंगे कि ये तो नहीं हो रहा है तुमसे।
देखिए पहले से ही बाबा ने बताया है, क्योंकि ये सूक्ष्म चीज है, किसी के प्रति अशुभ भावनाएं रखना, किसी के प्रति अपनी वृत्ति गलत बनाए रखना, मान लो उसे 10 साल पहले उससे कुछ झगड़ा हुआ था, मन मुटाव हुआ था, तो वृत्ति निगेटिव बनी हुई है, तब से अब तक ये सूक्ष्म विकर्म हो जाता है, क्योंकि उस व्यक्ति के बारे में हम वैसा ही सोचेंगे, वैसा ही करेंगे, इससे हमारी मन की और आत्मिक शक्तियां धीरे धीरे नष्ट होती जाएंगी। क्रिमिनलाइज रखना सूक्ष्म विकार, सारा दिन उस दिनचर्या को फॉलो न करना जो बाबा ने हमें सिखाई है। बाबा ने ये अमृत वेले के लिए कहा कि माया जब देखती है कि सारा दिन अलबेले रहे हैं तो सवेरे सवेरे बदला लेती, अच्छा भगवान की नहीं मानी, अब मैं तुम्हें ठीक करती हूँ, सुला देती, योग नहीं करने देती। ये तो बाबा की लैंग्वेज है ऐसे ज्ञान देने की, पर अगर सारा दिन हम अच्छी अच्छी स्मृतियों में नहीं रहते, ये भी सूक्ष्म तरह से एक विकर्म होता है। भगवान की अवज्ञा करना, इसका भी बहुत चर्चा, ये भी सूक्ष्म विकर्म होता है। मुख के द्वारा किसी को बुरा बोल के दुखी कर देना, ये विकर्म है। कई लोग एक दूसरे की बुराई करते रहते हैं, संबंध बिगाड़ते रहते हैं। उदाहरण ही दे देता हूं, माँ की एक लड़की की शादी हुई है, वो ससुराल में, माँ रोज बात करती है फोन पे और उसे ऐसी वैसी बातें बताती रहती है, उसे पता नहीं चलता इसका प्रभाव उसके संबंधों पर बुरा पड़ने वाला है, ये भी सूक्ष्म विकर्म है। कई लोग दूसरों की बुराई करके संबंधों में खटास पैदा करते रहते हैं, ये भी सूक्ष्म विकर्म है। तो परचिंतन करना, पर निंदा करना दूसरों के बारे में, जिसको चुगली कहते हैं वो करते रहना, संबंध बिगाड़ने का प्रयास करना, ये सूक्ष्म विकर्म है, बड़े तो बहुत सारे हैं।
जी जी जी, तीन पे हम सबका ध्यान हो, क्योंकि ये होते रहेंगे तो लगता है कि फिर तो योग होगा नहीं,
योग लगेगा नहीं, मन पर इन अवज्ञाओं का बोझ हमें उड़ने नहीं देगा।
जी जी जी, प्रीति जी, कई बार तन की बीमारी, मन की स्थिति का ऊपर नीचे होना या स्वभाव संस्कार का टकराव होना, इसे हम हिसाब किताब कह देते हैं, और बाबा कहते हैं कर्मातीत, अर्थात अपने पिछले हिसाब किताब के बंधनों से भी मुक्त। तो इन पिछले हिसाब किताब को हम कैसे हल्का करें ताकि कर्मातीत की स्थिति।
हाँ देखिए, सब कुछ हिसाब किताब से नहीं होता। मान लो संस्कारों का टकराव ही हो रहा है, उसमें हिसाब किताब की बात नहीं है, वो उस व्यक्ति के संस्कार, उसका चिंतन, वो अपने संस्कारों को बदल नहीं पाया है। मान लो बचपन से ही थोड़ा क्रोध था, ज्ञान में आ गए, क्रोध कंटिन्यू है, उस पर ध्यान नहीं दिया, तो वो हिसाब किताब न होके उसके संस्कारों की बात हो गई है। तो हमें इन चीजों पर थोड़ा ज्ञान युक्त होक के ध्यान भी देना है, ताकि हम अपने को बदल सकें। हमें दूसरी आत्माओं के लिए सुभावनाएं भी बहुत बढ़ानी हैं। सुभावनाएं भी हमारे बोझ को हल्का करने वाली हैं। इस पे बहुत ध्यान देंगे और अपने को चेक करेंगे, संसार की हर आत्मा के लिए हमारे मन में सुभावनाएं हो, सद्भावनाएं हो। मुझे तो बहुत पहले ये बात मिल गई थी कि अगर संसार के एक व्यक्ति के लिए भी घृणा भाव है, नफरत है, तो योग टूटता ही रहेगा। मुझे याद है, हम नक्की पे घूम रहे थे, दो साथी, चर्चा हो रही थी विनाश कब होगा, तो उसने बड़ा अच्छा उत्तर दिया, जब हमारे मन में सबके लिए सुभावनाएं हो जाएगी, क्योंकि सुभावनाएं हमारे संबंधों को स्वीट बनाती हैं।
जी,
सभी को दुआएं दें रोज, संसार की सब आत्माओं को, जो आपके परम मित्र हों उनको ज्यादा परम मित्र तो समझते हैं, जो थोड़े शत्रु भाव रखते हैं उनको ज्यादा सुभावनाएं देंगे, तो हमारे कर्मों के जो बंधन है वो धीरे धीरे ढीले होंगे। थोड़ा हमें साक्षी भी होना पड़ेगा। मान लो आपका परिवार है, उससे तो आपके कर्मों के हिसाब किताब हैं, थोड़े हल्के और साक्षीपन, हल्का रहना बहुत बड़ी क्वालिटी है। जो हल्के रहते हैं उनके बंधन भी हल्के हो ही जाते हैं।
जी जी, हल्के रहें, साक्षी रहें और परम मित्रों को शुभभावना दें, क्योंकि उनके लिए निकलती नहीं, हमें लगता है कि ये रास्ते का कांटा कब हटे तो मैं कर्म योगी बनूं।
बिल्कुल मुश्किल काम है, लेकिन ये समझना चाहिए कांटा हटेगा दूसरा तैयार है, वो इंतजार कर रहा है कब ये हटे तो मैं जगह बनाऊं। इसलिए हमारी शुभ भावनाएं इन सब चीजों को समाप्त करेंगे।
जी ब्रदर जी, कर्म की शुरुआत में तो बाबा की याद रहती है, लेकिन जैसे जैसे कर्म में इन्वॉल्व होते जाते हैं तो कर्म कॉन्शियस बनते जाते हैं, तो यहाँ क्या किया जाए?
हाँ देखिए, अटेंशन की बात है, यह तो बड़ी नेचुरल बात, लेकिन ये भी अच्छा है कि किसी कर्म की बिगिनिंग में हमारी स्थिति बहुत अच्छी रहे, स्मृतियां बहुत अच्छी रहे, हम शुरू ही अच्छी फीलिंग से करें, जैसे हमने बाबा को बुला लिया या अशरीरी होने का अभ्यास कर लिया या बाबा से दो बातें कर ली या कोई अच्छे संकल्प कर लिए। अब ये तो नेचुरल है, फिर मनुष्य कर्म में लगेगा, निरंतर कर्म में वो रहे, इसके लिए तो बहुत गहन तपस्या की जरूरत होती है। पर यह बहुत सुंदर बात है कि अपनी दिनचर्या में आप 8-10 कर्म चुन ले भिन्न भिन्न तरह के, और हर कर्म से पहले एक अच्छा अभ्यास अवश्य कर ले, चाहे वो 1 मिनट ही हो, तो उसका प्रभाव भी कर्म पर दिखाई देगा। और अगर आप कर सकते हैं कर्म के बीच बीच में भी कोई स्मृति, केवल स्मृति, भाई मैं महान आत्मा हूं बस, या मैं इस शरीर में बैठी हूं इसे कर्म करा रही हूं, इतनी इसमें 10 सेकंड का ही काम है, तो इसका इफेक्ट भी कर्म पर बहुत अच्छा रहेगा और हम कर्म में थकेंगे नहीं, हमें एनर्जी मिलती रहेगी और शाम को हमें ऐसा लगेगा हमने बहुत अच्छा कर लिया है आज।
ऐसा ही प्रश्न कहते थे कि अकेले रहते कर्म योग हो जाता है, लेकिन यदि छोटे बच्चे साथ हैं तो कर्म के साथ योग नहीं बन पाता, कितना भी टाइम टेबल सेट कर लो पर उस पर चल नहीं पाते। साथ ही जब हम पढ़ाई या अपनी जॉब कर रहे होते हैं तो पूरा ध्यान वहां केंद्रित करना पड़ता है, ऐसे में यदि हम बाबा को याद करने बैठ जाए तो हमारी एकाग्रता टूट जाती है, वहां फोकस नहीं।
हाँ नहीं, इसमें याद में बैठ की बात ही नहीं। और माँ बाप अगर अपने बच्चों के साथ हैं तो ये बड़ी नेचुरल बात है, अब छोटे बच्चे बातचीत करेंगे, हंसे बहलाएंगे, कुछ पूछेंगे, तो ध्यान तो उधर जाएगा ही। इसको भी हल्का कर दें सभी। और मान लो आप स्टूडेंट हैं और पढ़ाई पे आपको फोकस करना ही है, तो आपको ये कर लेना चाहिए कि हर घंटे में आप 5 मिनट स्पेयर कर दो और 5 मिनट बैठकर अच्छा अभ्यास कर लो। इससे आपको बहुत फायदा होगा, आपकी बौद्धिक शक्ति बढ़ेगी, स्मरण शक्ति बढ़ेगी, मेमोरी पावर बढ़ेगी, आपकी मेहनत बहुत कम होगी। आप करके देखो, जो काम आप, जो तैयारी आप 1 घंटे में करते हैं वो 40 मिनट में 50 मिनट में पूर्ण हो जाएगी, धीरे धीरे आपका टाइम ज्यादा बचने लगेगा, क्योंकि मुख्य लक्ष्य बुद्धि को बढ़ाना होना चाहिए, रट्टा लगाना नहीं। सारा दिन पढ़ते रहें उससे तो ब्रेन भी थकता है और मेमोरी में सारी बातें रहेंगी भी नहीं। इसलिए सभी स्टूडेंट्स का लक्ष्य होना चाहिए, मुझे बुद्धि का विकास करना है, मुझे मेमोरी पावर का विकास करना है। इसलिए सोशल मीडिया पर भी कम रहें भले ही आप, लेकिन थोड़ा संयमित हो जाएं। आजकल के जो गेम्स आदि चलते हैं उससे बहुत नुकसान होता है। कल एक बच्चे की कहानी आई थी, 11 साल का, सुसाइड कर लिया, मम्मी रोना नहीं, मैंने 40,000 रुपए हार गया हूं मैं, अब मैं मर रहा हूं खेल खेल में वही मोबाइल पे। तो ये सब कितनी बुरी चीजें हैं, अब सरकारें बेचारी क्या करें, कहां एक एक को समझाएंगे। युवक छोटे बच्चे इन चीजों में तल्लीन हो जाते हैं, उससे बुद्धि भटकती है, फिर पढ़ाई पे उतना ही ज्यादा समय देना पड़ता है, एकाग्रता नहीं होती। उस टाइम तो आप ये कर लो, बाबा मेरे साथ बैठा है, बस बीच बीच में 3-5 मिनट निकाल के अच्छे अभ्यास कर ले, सारा टाइम आप अपनी पढ़ाई पे फोकस।
क्योंकि मुझे लगता है जब भी आपने स्पष्ट कर दिया, इसी बात में कंफ्यूजन थी कि मान लीजिए मैं 2 घंटे वर्क कर रहा हूं, तो वर्क कर रहा हूं तब तो मैं याद नहीं कर पा रहा हूं, वो स्थिति नहीं है, तो शुरुआत में ही अच्छा अभ्यास कर लें ताकि उसका इफेक्ट रहे। लेकिन फिर इसे हम कर्मयोग कहेंगे या हाँ, फिर कितना काउंट करें? फिर
नहीं, ये कर्मयोग ही होगा। और जैसे मैंने कहा, बीच बीच में आपको स्वमान याद कर ले, बस आप कंप्यूटर पे बिजी हैं, बस मेरे साथ बाबा है, इतना ही। तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कितना हम ईश्वरीय रस में रहे हैं, वो सब योग युक्त समय में काउंट हो जाएगा।
बिल्कुल, हम निरंतर कर्मयोग का अभ्यास करें, लेकिन हमारे आसपास के लोग बार बार हमें व्यर्थ बातों की ओर ले जाते हैं और उनसे हम किनारा भी नहीं कर सकते, हमें उनको रिप्लाई भी करना पड़ता है, ऐसी स्थिति में कर्मयोग को कैसे मेंटेन करें?
आप योग युक्त हो, आपके वाइब्रेशंस उनको ठीक कर देंगे, आपके चेहरे की चमक उनको महसूस कराएगी कि यार ये ठीक व्यक्ति नहीं, इन बातों के लिए किसी और को पकड़ लो, हम थोड़ी रुचि लेने लगते हैं तो होता है, हमने ये संकल्प कर लिया कि हमें सुनना ही पड़ता है, थोड़ा सा इस संकल्प को भी हल्का करें, हम नहीं चाहें तो न सुने।
लेकिन वो नाराज हो जाते
हैं। हाँ, नाराज तो होंगे, थोड़ा सुन ले बाकी क्या दे, समझा भी तो सकते हैं ना। इतना अधीन दूसरे के नहीं होना चाहिए कि वो चार घंटे हमसे व्यर्थ की बातें कर रहा है और हम आनंद लें और बैठ जाएं और उसमें इन्वॉल्व हो जाएं, चार घंटे के बाद याद आए ये क्या हो गया, थोड़ा सा हम ना कर सकते।
कुछ युक्ति भी अपनाया जाए और योग युक्त अवस्था हो। बैठ कर तो बहुत अच्छा योग होता है, लेकिन कर्म करते हुए योग की एक रस स्थिति नहीं रहती
है। बहुत अच्छी बात है, बैठ के योग अच्छा होता है, ये अपने में एक गुड पॉइंट है, क्योंकि कर्म का इफेक्ट आपके मन पर नहीं हो रहा है, तभी आप बैठकर अच्छा योग कर लेते हैं। तो आप बैठने को ही थोड़ा थोड़ा कर लें, 10-10 मिनट बैठ के, 5-5 मिनट बैठ के ही अच्छा योग कर लिया करें।
कर्म करते मुरली सुनना या क्लास सुनना या गीत सुनना, क्या इसे भी हम कर्म योग कहेंगे?
कह सकते हैं, क्योंकि इससे हमारी श्रेष्ठ स्मृति रहती है। मान लो कोई बहन भोजन बना रही है और वो अच्छी क्लास सुन रही है, वो क्लास सुन के वो मगन हो रही है, अच्छी स्मृतियां उसे आ रही हैं, तो वो क्लास क्लास नहीं रहेगी, उसको स्मृति स्वरूप बनाने वाली हो जाएगी।
जी जी जी, कर्म करते हुए हम ये कैसे अनुभव करें कि ये हमारा पिछला कर्म चुकतु हो रहा है या नया कर्म बन रहा है, ये प्रश्न बहुतों के।
इस झंझट में जाने की जरूरत कहाँ पड़ गई है। बाबा ने कह दिया तुम मुझे याद करते रहो, मैं तुमसे प्रतिज्ञा करता हूँ तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। थोड़ा बाबा पे छोड़ दें, लेकिन ये तो सत्य है, जैसे जैसे विकर्मों का बोझ हटेगा खुशी बढ़ेगी। मुरलियों में रोज आ रहा है, आज भी मैं जो रिकॉर्ड की उसमें ये आया, तुम सुखों के देवता बन जाओगे जैसे जैसे योग बढ़ेगा। तुम्हारे मुख से कटु वचन निकलेगा ही नहीं, तुम्हें बहुत खुशी रहेगी, हल्के होते जाएंगे, बंधन कटते जाएंगे। आगे का हो रहा है ये नहीं सोचे, हम योग करते चले, खुशी बढ़ रही है, मन हल्का हो रहा, बस इस पर हम ध्यान दें तो बोझ समाप्त हो रहे हैं।
बिल्कुल, और वैसे अनुभव तो हो ही जाता है कि बन रहे हैं या फिर ये, क्योंकि जब हम योग युक्त रहते हैं तो स्पष्ट दिखाई देता है कि हम भारी नहीं हो रहे होते।
बनेंगे तो योग लगेगा ही नहीं, सीधी सी बात, अगर आपका अच्छा योग लग रहा है तो आपके कर्म बंधन बन नहीं रहे हैं, कट रहे हैं,
इसीलिए सार में हम सब रहे। भ्राता जी, एक दो प्रश्न रह गए हैं फिर हम बहुत आज भाग्यवान हैं कि भ्राता जी हमें शाम का पावरफुल योग भी कराएंगे, इसी कर्म योग से जुड़ा हुआ, क्योंकि हम सब अमृत वेले भी बाबा से कर्मयोगी फरिश्ता भाव का वरदान ले रहे हैं और सबको वाइब्रेशन भी दे रहे हैं फरिश्ते बनकर, सारे दिन भी और शाम को भी। तो भ्राता जी आज सुंदर अभ्यास कराएंगे। भ्राता जी, बाबा कहते हैं त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म करो तब कर्मातीत अवस्था आएगी। अब क्या हर कर्म को हम ऐसे त्रिकालदर्शी होकर के देखें समझें फिर कोई कर्म करें?
नहीं, देखिए इसमें हर कर्म के पहले की ये बात नहीं है। कोई इम्पोर्टेंट काम हम करने जा रहे हैं, मान लो कोई नया बिजनेस शुरू करने जा रहा है व्यक्ति, लौकिक की बात कहूं, अब उसे सोचना तो पड़ेगा ही तुम्हें इसकी कितनी जानकारी है। ऐसा तो नहीं तुम 10 लाख लगा दोगे और सब चला जाएगा, औरों का भी गया है क्या, हमने कितनी एक्सपर्टाइजेशन उसमें प्राप्त की है, हम कितने सफल होंगे, ये सब पहले से त्रिकालदर्शी होकर मनुष्य सोचेगा ना। स्टूडेंट भी पहले से सोचते हैं मुझे मेडिकल में जाना है, उस अनुसार अपनी तैयारी करते हैं, मुझे IIT में जाना है, उस अनुसार अपनी तैयारी करते हैं, वैसे ही सब्जेक्ट लेते हैं। तो इसको कहते हैं त्रिकालदर्शी बनना। कोई विशेष कर्म हम करने जा रहे हों तब हमें सोचना इसका परिणाम अच्छा होगा या नहीं होगा, इससे बहुतों का भला होगा या नहीं होगा, इससे हमारे कर्म बंधन बनेंगे या हम और हल्के हो जाएंगे, पुण्य बनेगा या नहीं बनेगा। तो हर कर्म में नहीं, विशेष कर्म जब हमें करने हैं, वो रोज भी नहीं करने होते हैं, कभी कभी 2-4 दिन में एक बार, कभी हफ्ते में एक बार, कभी मनुष्य को बड़ा निर्णय लेना होता है वो तो जीवन में 1-2 बार ही लिया जाता है, उसमें भी लोग बहुत धोखा खाते हैं, धोखा खाते हैं ये दिखाई देता है। एक कुमार, मैं साफ ही बता देता हूँ, एक कुमार 20 साल से ज्ञान में चल रहा, बीमार हो गया, अब उसको संकल्प आया भाई अकेले जीवन जीना तो बहुत मुश्किल है, शादी कर ले पवित्र रहेंगे। अभी उसको भविष्य का ये ज्ञान नहीं है कि शादी करके पवित्र रहना कितना कठिन होगा, अब वो शादी कर लेता है, पत्नी आती है, संघर्ष शुरू होता है, दोनों जॉब में हैं, बनती नहीं है, अब न योग होता, बीमार होता है तो पत्नी जॉब पे गई है, अकेले पड़े हैं, कोई पूछने वाला नहीं। कुमार कहते हैं पहले अकेले अच्छे थे, कम से कम और कोई चिंता तो नहीं थी, अब पत्नी के लिए खाना बनाना पड़ेगा, वो जॉब पे गई है तो
और बंद है।
त्रिकालदर्शी हो के निर्णय नहीं लिया ना
जी।
ऐसे जो जीवन क्या पूरे कल्प को जो प्रभावित करने वाले निर्णय हैं उसको सोच समझ के लेना चाहिए।
बिल्कुल। अंतिम प्रश्न है बैठे जी कि बाबा कहते हैं कर्मातीत स्थिति की अलग अलग परिभाषाएं बाबा ने दी हैं, जैसे कर्मातीत अर्थात इच्छा मात्रम अविद्या, बेहद के वैरागी, निर्संकल्प स्थिति, अनादि आदि स्थिति में नेचुरल रूप से रहना या आकर्षण मुक्त रहना। तो कई बार कन्फ्यूज होते हैं कि किस पे फोकस करें।
नहीं, ये सारी चीजें आप ही आ जाएंगी।
केवल योग,
अगर हम योगयुक्त रहने का अभ्यास करेंगे, इन पे थोड़ा थोड़ा ध्यान देंगे। भाई बेहद के वैरागी, अब वो थोड़ा एक पे ध्यान देंगे, हमें वैराग लाना है फिर योग करना है, योग अच्छा होता जाएगा, कुछ चीजों से हम डिटैच होते जाएंगे, कुछ चीजों पे हमें ध्यान देना है। भाई कर्मेंद्रियों के रसों में हम लिप्त तो नहीं हो गए हैं
जी।
ऐसे अनासक्त वृत्ति या जो जो भी बातें बाबा ये कहते हैं, इच्छा मात्रम अविद्या, योगी तो बन ही वही सकेंगे जिनकी इच्छाएं कम होंगी। अगर कोई कहे मैं संसार में भी सब कुछ पाना चाहता हूं, करोड़पति बनना चाहता हूं, और योगी भी, तो एक ही चीज मिलेगा, या संसार मिलेगा या भगवान मिलेगा, ये तो पक्की बात है। तो हम अपने योग के चार्ट को बढ़ाएं, ये सब चीजें पीछे पीछे आने लगेंगी। और जैसे मैंने अंडरलाइन कर रहा हूं फिर से कहा, थोड़ा थोड़ा हर चीज पे ध्यान अवश्य देना है, थोड़ा चिंतन रखना है। जैसे इच्छा मात्रम अविद्या की बात है, भाई जब हम योगयुक्त हो जाएंगे, जब हमें ईश्वरीय रस मिलने लगेगा, तो संसार की इच्छाएं स्वतः ही फीकी पड़ने लगेंगी। जब हमें ईश्वरीय सुख और ईश्वरीय आनंद आने लगेगा, तो कर्मेंद्रियों के रस स्वतः ही ढीले पड़ जाएंगे, तो ऑटोमेटिक होगा। लेकिन हमें ध्यान अवश्य देना है कि हम कर्मेंद्रियों के रस की तरफ भाग तो नहीं रहे, ऐसा तो नहीं हम सुनने के रस में लग गए हैं, हम आंखें अच्छी अच्छी चीजें देखें, नेट से अच्छी अच्छी हमें जानकारी मिले उसमें हम लग गए हैं, तो वो रस खत्म हो इस पे हमें थोड़ा अटेंशन अवश्य रखना है।
बिल्कुल। तो अंत में बेहतर जी कुछ सूत्र वाक्य हम सबकी प्रेरणा के लिए, ताकि हम अच्छे कर्म योगी बन जाएं और इसकी ओर बढ़ें, आपके पूरे जीवन का निचोड़ पश्चात हम योग की ओर बढ़ेंगे।
देखिए, चिंतन बहुत अच्छा हो मन में, व्यर्थ के विचारों को हम धीरे धीरे समाप्त करते चले। मैं नहीं कहूंगा फुल स्टॉप लगा दो, क्योंकि वो प्रैक्टिकल नहीं होता है, एक दिन में नहीं होता है। हमें अवेयरनेस होती जाए, मेरे ये विचार गलत हैं, इन्हें मुझे छोड़ना है, मेरा ये भय गलत है, मेरी ये चिंता गलत है, मेरा इस तरह से परेशान रहना गलत है, उनको कैच करें, अवेयर हो जाएं और उनसे मुक्त होते चले, तो इसकी बहुत आवश्यकता है। जीवन का एक सुंदर लक्ष्य बनाए, लक्ष्य में फिर रिपीट कर रहा हूं, लक्ष्मी नारायण बनना है, कर्मातीत होना नहीं। भाई मुझे 3 मास में इतना योग कर लेना है, मुझे ये धारणाएं बढ़ा देनी है 3 मास में अपने जीवन में, इन चीजों से मैं मुक्त हो जाऊंगा पक्का, ऐसा लक्ष्य बना लें। तो जहां लक्ष्य दृढ़ होता है और एक सुंदर प्लानिंग होती है, बस ये 2 ही चीज होनी चाहिए, तब मनुष्य को पता चलता है बाधा कहाँ है, उसको कैसे मुझे छोड़ना है, और मनुष्य छोड़ता है। ये संगम युग पर ये एक ऐसा वरदान है बाबा का कि जो करना चाहते हैं ना दृढ़ता से, बाबा उनसे कराने लगता है संपूर्ण मदद करके। इस सूत्र को हमें याद रखना है, तो करने की लगन मन में हो, कराने वाला तो तैयार बैठा है, कब ये उड़ने के लिए पंख तो फड़फड़ाए तो मैं उड़ा दूं इन्हें। ये जीवन के बहुत अच्छे अनुभव भी हैं और सबको ऐसा ही करना है।
जी जी जी। और सभी हमारे स्पार्कलर्स, हमारे सभी देश विदेश के भाई बहने जो भी जुड़े हुए हैं, सभी निश्चित रूप से बहते जी ऐसे ही पंख फड़फड़ाना चाहते हैं, उड़ना चाहते हैं, फरिश्ता बनना चाहते हैं और बाबा की आशाओं को पूर्ण करना चाहते हैं। तब चाहेंगे हम अपने पंख लिए तैयार हैं, आप हमें उड़ाएं। अगले 20 मिनट हमारे पास सुंदर योग के हैं। चलिए भ्राता जी के साथ आज हम सबको गहन अनुभूति कर्मयोग की स्थिति, अपने फरिश्तेपन की स्थिति का। तो चलते हैं, अपने पंख तैयार कर लें, उड़ते हैं आकाश में, बाबा के पास चलते हैं। राधा जी,
चलें सभी एक सुंदर महावाक्य के साथ आज का योग प्रारंभ करते हैं। भगवान वाच, बच्चे तुम देवताओं के साथ दो युग तक रहे, दो युग फिर मनुष्यों के साथ रहकर तुमने देख लिया, अब थोड़ा सा समय मेरे साथ रहो तो चलेंगे अपने परम पिता, अपने खुदा दोस्त के पास, लेकिन पहले आत्मा बनेंगे। मैं चमकती तेजस्वी मणि, मास्टर ज्ञान प्रिय भ्रकुटी की कुटिया में, ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर हूं, परम पवित्र हूं, मुझसे चारों रंग बिरंगी किरणें फैल रही हैं, और मेरे चारों ओर एक अति आकर्षक डिवाइन प्रभा मंडल बन गया है। बैठ जाए इसके मध्य में, सभा मंडल के साथ मैं आत्मा उड़ी परम धाम की ओर, और जा बैठी अपने घर में, स्वीट साइलेंस में। ये साइलेंस बहुत स्वीट है, मन को भाने वाली शांति, सर्वशक्तिवान विराजमान है, जो सृष्टि के बीच है, उनका दिव्य तेज जैसे कि सारे ब्रह्मलोक को प्रकाशित कर रहा है, स्वरूप, मन को भाने वाला स्वरूप, उनके अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। विज्ञान सूर्य ज्ञान के सागर हैं। उनकी शक्तियों की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। स्वयं में ईश्वरीय शक्तियां भरकर मैं आत्मा वापिस देह में शक्तियों की किरणों का फाउंटेन मुझ पर पड़ रहा है। अब मैं आत्मा इन किरणों के बीच से ऊपर की ओर चलती हूं। ये किरणें जैसे मेरा मार्ग हैं, किरणों के मध्य से ऊपर जा रही हूं। टच कर दिया शिव बाबा को, उनकी संपूर्ण एनर्जी मुझ में समाने लगी। इन किरणों के मार्ग से ही मैं आत्मा नीचे उतरने लगी। पुनः अपने शरीर में My lighthouse, my house. चारों ओर लाइट माइट फैल रही है, फिर से मैं आत्मा इन किरणों के मार्ग से चलने लगी अपने परम प्रियतम के पास, जो मुझे आकर्षित कर रहे हैं। पहुंच गए उनके समीप, दिव्य तेज मुझ में समा रहा है। इन किरणों के ही मार्ग से मैं आत्मा वापिस आ रही हूं विश्व कल्याण के लिए। फरिश्ता हूं, प्रकाश के शरीर में हूं, पवित्रता का फरिश्ता। इस संपूर्ण प्रकृति का मालिक, मैं आकाश में हूं। देखें स्वयं को ऊपर, फील करें नीचे से अनेक लोग मेरे इस फरिश्ते स्वरूप का दीदार कर रहे हैं। ये कौन तेजस्वी फरिश्ता आकाश में प्रकट हुआ है? बाबा की पवित्र किरणें, गोल्डन किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। ये किरणें पूरे आकाश में फैल गई हैं। आकाश पवित्र किरणों से भर गया है। ये पवित्र किरणें चारों ओर फैल रही हैं। प्रकृति ने स्वयं में समा रही है। वातावरण शुद्ध हो रहा है। प्रकृति को शुक्रिया करें जिसने 5,000 वर्ष तक हमारी पालना की है। 84 जन्म हमें बहुत सुख दिया। बाबा की पवित्र किरणें मुझ में समाकर चारों ओर फैल रही हैं।